मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 17 मार्च 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन नौजवान साथी का नाम है पिंकी, जो गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। तो पिंकी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, शनिवार और इतवार का जो हम लोग का डेली ऑडियो लेक्चर का शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, और तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी सूचनाएं आपसे साझा करना चाहूंगा, और वो ये कि शनिवार और रविवार इन दोनों दिन डेली ऑडियो लेक्चर और ठीक इसी तरह से लाइफ मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं कराया जाता है। आप लोगों के विश्राम का ये दिन है तो वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो सैटरडे को अवेलेबल होंगी, संडे को नहीं होंगी। सैटरडे को जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपको, चूंकि दो दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे की छुट्टी, इस महीने में कि डेली ऑडियो आपके पास नहीं होता है, अगर आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में तो कहीं कहीं तो सैटरडे संडे दोनों दिनों की छुट्टी होती है, नहीं तो संडे की छुट्टी तो होती ही है। ठीक यही स्थिति है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि सैटरडे संडे दोनों दिन की छुट्टी हो, या फिर संडे की तो होती ही है। इसलिए मित्रों, कुछ अतिरिक्त चीजें भी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि आप अपने इस समय का एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स योजना और कुरुक्षेत्र, इन दोनों के आपको एक एक आर्टिकल जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। उसमें योजना से दो आर्टिकल होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र से भी दो आर्टिकल होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, एक वीकली क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं वो आपको दिया जाता है, जिसकी फ्रेमिंग, जिसकी बुनावट पूरी तरह से मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाए कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, ताकि आप तेजी से आंसर लिख सकें, आंसर के बारे में एग्जामिनेशन हॉल में आप तत्काल सोच सकें। ऐसा देखिए तभी संभव होगा जब आप शुरू से इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वीकली क्वेश्चन भी एक प्रोवाइड किया जाता है, और फिर हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी, अब हम आइए बात करते हैं न्यूज एनालिसिस की। मित्रों, कल के AIR न्यूज आपने सुने होंगे, उस AIR न्यूज में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आपने देखा कि अभी जो जिन राज्यों में चुनाव हुए, अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का फैसला होना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला होना है, बाकी जगह मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और सिद्धू जी हमारे पर्यटन मंत्री बन गए हैं पंजाब के, जो क्रिकेटर हैं उनका नाम से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। फिर आपने गोवा में भी पर्रिकर जी को देखा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मणिपुर में भी मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है, बीरेन सिंह जी जो कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में थे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का फैसला होना है, और उत्तराखंड का फैसला आज हो भी जाएगा। अखबारों में नाम आ रहा है, लेकिन अभी मैं जानबूझ करके, चूंकि वो कन्फर्म नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इसके माध्यम से मैं आप के दिमाग में एक तथ्य लाना चाह रहा हूं। आपको मालूम है कि जिस तरीके से भी राज्यपालों ने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया, नियुक्त किया, उसको लेकर के हम लोग बात करते रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स अपने आप में ना इतना डिफरेंट एंगल वाली चीज है, इतना बहुकोणीय विषय है कि आप चकित हो जाएंगे। ये शतरंज की बिसात से भी कहीं मुझे लगता है कि ज्यादा कठिन काम है। यहां मैं जो तथ्य आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूं, और इस पर आप लोग विचार भी कीजिएगा, कि देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली बहुसंख्यक की सरकार है ना, बहुमत दल का नेता हर जगह आप देखिए संसद के प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, तो हर जगह हम बहुमत का मामला देखते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी कोई फैसला करेगी तो बहुमत से करेगी, तो हर जगह हमें बहुमत दिखाई देता है और यही डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए कि जो गोवा और मणिपुर की जो बात है, क्या वहां बहुमत का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि इस पर अब एक डिस्कशन शुरू हो गया है। बहुमत का उल्लंघन इस मायने में कि जो सबसे बड़ी पार्टी, दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उनको सरकार बनाने का मौका दिया गया। तो अगर आप देखेंगे कि सरकार बनाने से पहले किसका बहुमत था, यह भी बहुमत नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। और कुछ एडिटोरियल कमेंट भी आए हैं कि यह एक ऐसा अच्छा अवसर था भारतीय जनता पार्टी के पास, जब वो राजनीति में एक नैतिकता स्थापित कर सकती थी या मापदंड स्थापित कर सकती थी। इस रूप में मापदंड, मानक, स्टैंडर्ड की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे पहले उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और यदि वह अनिच्छा जाहिर करती है तो फिर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, राइट? सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। अब आपको सिर्फ बहुसंख्यक को परिभाषित करना है। जनता ने कांग्रेस को सबसे अधिक समर्थन दिया, तो अब उसको किनारे करके सरकार बनाई जा रही है, तो क्या यह जन समर्थन का निरादर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जब सरकार बनाई गई है और उस सरकार ने, चाहे उसकी वो सेकेंड लार्जेस्ट क्या, वो थर्ड लार्जेस्ट ही क्यों न हो, लेकिन यदि उसने विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है, तो क्या यह अपने आप में ही बहुसंख्यक होने का प्रमाण नहीं है, या जनता की जो स्वीकृति है उसका सम्मान नहीं है? क्योंकि देखिए, चाहे वो दूसरी पार्टी के क्यों न हो, निर्दलीय ही क्यों न हो, लेकिन जनता के द्वारा निर्वाचित है, तो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने ही मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। तो अब आप देखें कि सरकार बनाने से पहले और सरकार बनने के बाद, यहां दो आपको बहुसंख्यक का रूप दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी का रूप दिखाई दे रहा है, राइट? इस पर आप लोग अपनी तरफ से विचार मंथन कीजिए, मजा आएगा। और सिविल सर्विस कम से कम जो सेकंड पेपर है आपका, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, वो इसी तरह का पेपर है। तो सबसे ज्यादा जो एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर है आपका, वो जनरल स्टडीज मेंस का सेकंड पेपर है, प्योरली एनालिटिकल, इतना एनालिटिकल दूसरा कोई पेपर नहीं है, इसीलिए मैं जानबूझकर आपको ये टॉपिक दे रहा हूं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दो तीन और खबरें थी उनको मैं पहले आपको जल्दी से बता दूं, फिर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर आएंगे। एक ईवीएम मशीन को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के आपने देखा कि कुछ पार्टियों ने आपत्ति उठाई। बहुजन समाज पार्टी ने तो जब चुनाव परिणाम ही घोषित हो रहे थे यूपी के, तभी इस पर सवाल उठा दिए थे। बाद में फिर केजरीवाल साहब ने भी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए, जिसको इलेक्शन कमीशन है उसने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, उनकी आपत्ति को नहीं मान रहा है और उसके तर्क उन्होंने दिए हैं, तो न्यूज में आपने सुना। तीसरी जो खबर है, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कि भारत सरकार ने इस बात को आउटराइट रिजेक्ट किया, इसका विरोध किया है, जो कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और उसका जो विवादित पीओके एरिया, उसको अपना पांचवां प्रांत घोषित करने की कोशिश की है। भारत ने इसका जमकर विरोध किया है और साफ भारत ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये आपको नाम मालूम होना चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस बारे में जब भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात हो, तनाव की बात हो, विवादों की बात हो, तो ये तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वो जो हमारा हिस्सा है उसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब वो कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन अभी पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर लिखने में यहां आपकी थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये बहुत भयानक चूक होगी, ये थोड़ी चूक नहीं होगी। मित्रों, अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाँ मैं इसे टॉपिक ही कहूंगा, वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। कल इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज के अखबारों में थोड़ी सी और विस्तार से बातें लिखी गई, हालांकि एडिटोरियल कमेंट अभी तक नहीं आया है, आर्टिकल्स भी नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आएंगे। फिर भी अब हमें थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेनी चाहिए जो भी हमारे सामने आए हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2002 के बाद अभी आई है, 15 सालों के बाद ये नीति आई है। 15 सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं, भारत की तस्वीर भी बदली है, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना में बहुत बदलाव आया है, जिसका आना एक जरूरी था। दूसरी बात की चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है और स्वास्थ्य इस तरह की नीतियों पर सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल का ही अगर आप पेपर उठा करके देखिए तो राष्ट्रीय बाल नीति पर क्वेश्चन है, तो इसलिए यह मान करके चलिए कि स्वास्थ्य नीति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है और इसका एक सेपरेट परमानेंट पेज आपको बना लेना चाहिए। अब मित्रों, हम इस बात पर आते हैं कि सिविल सर्विस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रेट क्वेश्चंस तो आपसे नहीं पूछेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नॉट एट ऑल, वो युग खत्म हो चुका और उस युग का खत्म हो जाना एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, अच्छी बात है। फिर भी आपको जानना तो पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आगे जो भी उसकी समीक्षा करनी होगी, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा, टिप्पणी करनी होगी, जो कुछ भी दिया जाएगा उस पर आप लिखने की स्थिति में कुछ होंगे ही नहीं। तो इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपको बकायदे नोट कर लेना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सबसे मुख्य मुख्य भाग क्या हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं आपको मालूम होने चाहिए और बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। जैसे आप देखिए कि जो इसका जो एक दृष्टिकोण है या कह लीजिए कि थ्रस्ट है, केंद्रीय बिंदु है, वो केंद्रीय बिंदु क्या है कि देश के सभी लोगों को, पहली बात तो है कि ये सभी लोगों से रिलेटेड ऑलमोस्ट 80%, अगर अपर क्लास को छोड़ दें तो 80%, यानी कि ये केवल बीपीएल के लिए नहीं है, केवल ग्रामीण स्वास्थ्य का नहीं है, केवल महिला और बाल स्वास्थ्य का नहीं है, सभी के लिए, राइट, जिसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये भी सब शामिल हो जाएंगे, सभी के लिए। नंबर वन, गुणवत्ता, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, गुणवत्ता इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्वालिटी, ये नहीं कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरी बात है सस्ती, अफोर्डेबल, ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके, महंगी नहीं, गुणवत्ता के साथ अगर महंगी है तो वो ऑलरेडी है, हमारे यहां फिर कमी नहीं है, बहुत से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी चैन चल रही, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, पता नहीं वेदांता, बहुत से हॉस्पिटल हमारे यहां हैं। तीसरा यह है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, वहां इसका प्रोविजंस किया जाना कि वहां अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको दूसरी सुविधाएं सब मिल सकें, गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें, वहां बकायदे चेकअप की सुविधाएं हों, टेस्ट की सुविधाएं हों, इस तरह के प्रोविजंस उसमें किए गए हैं। तो ये तो इसका केंद्रीय बिंदु है। अब इसको कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या एक्शंस होंगे, तो उसमें अब आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसकी उस पर बात कर सकें। हो सकता है कि अखबारों में वो चीजें आ जाएंगी और अखबारों में नहीं आएंगी, तो आप देखेंगे कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जो मैगजीन्स होती हैं उन मैगजीन्स में स्वाभाविक तौर पर इस पर एक बड़ा आर्टिकल आएगा और उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि और क्या क्या प्रोविजन्स हैं। कुछ प्रोविजंस खासकर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि इसको लागू करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इसके दायरे में लाया जाएगा, कि मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गया तो जो हॉस्पिटल है उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे। एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो बीमा को लेकर के है कि देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको बीमा योजना के तहत, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाया जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, यहां जो बीमा योजना की बात है, यहां मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूंगा जो आपके आंसर को बहुत अच्छा बना सकता है, दूसरों से थोड़ा सा अलग बना सकता है, और इसे आपको चाहिए कि आप नोट कर लें, और वो है ओबामा हेल्थ केयर। जब ओबामा, बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो वो 2010 में वो एक एक्ट लेकर के आए थे जिसे एक तरीके से अफोर्डेबल केयर एक्ट भी कहा जाता है। शब्द देखिए, अफोर्डेबल मतलब जिसको आप अफोर्ड कर सकें, जो आपके लिए, जो जिसको आप बर्दाश्त कर सके, कह लीजिए जो आप कर सकें, अफोर्डेबल केयर एक्ट 2010 में। और ये तो बहुत बड़ा एक्ट था, उस समय बहुत चर्चा में भी आई थी। इसके जो मेन प्रोविजंस है देखिएगा, उस मेन प्रोविजंस में सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, उसका सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है इंश्योरेंस। उसमें उन्होंने तीन चार चीजें की थी। पहला तो यह है कि जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, मतलब लोग आसानी से इंश्योरेंस करा सकें। आपने देखा जनधन योजना वगैरह के समय में भी हमारे यहां जो प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू की गई, 2 रुपए महीना देकर के, 10 रुपए महीना देकर के, इस तरह का मालूम है ना आपको, आप इंश्योरेंस करा सकते हैं और उसमें आपको 2 लाख रुपए का हेल्थ केयर मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात थी वो, तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर। उसमें फिर जो दूसरी बात उन्होंने दी थी वो ये दी थी कि जो हेल्थ केयर है ठीक है उसकी गुणवत्ता सुधारनी है, मतलब इंश्योरेंस आपने करा लिया, अब इंश्योरेंस के माध्यम से जो आपको हेल्थ केयर मिल रही है उसमें उसकी भी तो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि जो इंश्योरेंस की भी जो क्वालिटी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस की क्वालिटी, इसको भी बेटर बनाना। इसके बाद जो उन्होंने थर्ड पॉइंट दिया था दोस्तों वो ये था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है यानी कि जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब है कि उनके लिए ऐसे नियम और कानून बनाना कि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी तो दे दी है लेकिन जब उस बेचारे को जरूरत पड़ रही है तो पता लग रहा है कि उसको घुमा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं और उसको हेल्थ केयर मिल ही नहीं रही है, उसका इलाज हो ही नहीं पा रहा है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां ये करती हैं, तो रेगुलेट करना उनके, उनको बहुत अच्छे से नियम कानूनों के दायरे में लाना और उनको लागू करना, ये उनका अगला था। इसके बाद ये था कि जो हेल्थ सेक्टर में जो बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, मतलब जो बहुत महंगी बीमारियां इलाज होने लगी हैं उनके रेट को कम करना, उनकी कीमतों को कम करना ताकि वो सस्ते में उपलब्ध हो सके। ये ओबामा केयर जो हेल्थ केयर जो स्कीम आई थी उसके पॉइंट से। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीमा, क्योंकि यदि आप बीमा करा लेते हैं तो सरकार के ऊपर उसका पड़ने वाला बोझ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, फिर वो बीमा कंपनियां वहन करती हैं। तो हमारे इस हेल्थ पॉलिसी में बीमा को भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। एक जो बहुत बड़ी बात है मित्रों, आखिरी पॉइंट के रूप में मैं चर्चा करना चाहूंगा, अब वक्त नहीं है, वो है कि ये प्रोविजन किया गया है कि हमारा जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका हम 2.5% इस पर खर्च करेंगे, हेल्थ पर खर्च करेंगे। अभी तक हम 1.3% खर्च कर रहे थे। देखिए इसके बारे में आपको अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, कई आंकड़े अलग अलग मैं खुद भी अखबारों में देख चुका हूं, कहीं 1.04 है, कहीं 1.4 है, कहीं 0.8 है, 0.8 है, अलग अलग तरह के आंकड़े मिल रहे हैं। लेकिन ये जो मैं आपको 1.3% बता रहा हूं दोस्तों, ये हमारे स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2015-16 में जो हमने खर्च किया है इसके बारे में उनके द्वारा दिया गया राज्यसभा में स्टेटमेंट है। राज्यसभा में हमारे स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि 2015-16 में हमने हेल्थ पर अपने जीडीपी का 1.3% खर्च किया है, इसीलिए इसे आप एक तरह से सही परसेंट मान सकते हैं। तो अब हम 2.5 पर आ रहे हैं, मतलब जस्ट डबल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया में जो हेल्थ पर जो खर्च होता है वो 6% है जीडीपी का। चाइना को देख लीजिए, बहुत हमसे बहुत बेहतर स्थिति में तो नहीं है, वो 3.1% खर्च कर रहा है बहुत पहले से, और हम 1.3 कर रहे थे, वो 3.1 कर रहा है। डेवलप्ड कंट्री देख लीजिए जहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है लोगों की, कनाडा 7.4, अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका 8.3, इंग्लैंड को देख लीजिए 7.6, और जो हम कह रहे आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं जहां पर हैप्पी इंडेक्स बहुत हाई है, जिनको जहां सारी चीजें बहुत बेहतर हैं, उनमें से एक कंट्री ले लीजिए डेनमार्क, तो वो हेल्थ पर खर्च कर रहा 9.2 डेनमार्क जैसा देश। मतलब डेवलप्ड कंट्री भी अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं और हम कर रहे थे 1.3, सोच करके देखिए कि कितना कम है। तो हालांकि इसे डबल किया गया 2.5, लेकिन आप इसे अभी पर्याप्त नहीं मान सकते। तो मित्रों ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर मैंने कुछ बातें की हैं, लेकिन ये हमारा चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए इस पर जैसे जैसे और राष्ट्रीय बहस छिड़ती जाएगी वैसे वैसे हम इस पर आगे भी बातें करेंगे। तो मित्रों अब मैं प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में कुछ बात करने की स्थिति में नहीं हूं, आपको काफी प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं लेकिन सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। तो दोस्तों अब मैं अपने सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, चंचल सोनकर जो बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हैं, मनीष सुनील सिंह, रुचि विश्वकर्मा, रागिनी कौरव, योगेश तिवारी, अभिषेक जायसवाल, परवेश बिश्नोई और बाला साहेब पवार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। दो दिनों के बाद सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।